شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك، اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا، اور جسے اے محمد اب تمہاری طرف ہم نے وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے، اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دے چکے ہیں، اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ۔ یہی بات ان مشرکوں کو سخت ناگوار ہوئی جس کی طرف اے محمد تم انہیں دعوت دے رہے ہو۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ لوگوں میں جو تفرقہ رونما ہوا وہ اس کے بعد ہوا کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ اگر تیرا رب پہلے ہی یہ نہ فرما چکا ہوتا کہ ایک وقت مقرر تک فیصلہ ملتوی کیا جائے گا تو ان کا قصہ تمام کر دیا جاتا، اور حقیقت یہ ہے کہ اگلوں کے بعد لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے اور وہ اس کی طرف سے بڑے اضطراب انگیز شک میں پڑے ہیں۔ چونکہ یہ حالت ہو چکی ہے اس لیے اے محمد اب تم اسی دین کی طرف دعوت دو جس طرح تمہیں حکم دیا گیا، اسی پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ سورہ شورا میں بار بار استقامت کی بات آ رہی ہے، جم جاؤ، قائم ہو جاؤ۔ ولا تتبع اهواءهم، اور ان لوگوں کی خواہشوں کی اتباع نہ کرو، ان سے کہہ دو کہ اللہ نے جو کتاب بھی نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں، اللہ ہی ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی رب، ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں، اللہ ایک روز ہم سب کو جمع کرے گا، پھر اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ کیا پتہ چلا کہ جھگڑے نہیں کرنے چاہیے، کوئی بات سمجھ آ گئی کر لیں، دوسرے کو نہ اس کے اندر الجھائیں، ہو سکتا ہے کہ اس کو بھی ایک وقت آئے گا سمجھ آئے گی۔ ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے کہ ہر مسلک ہر فرقہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہے اور دوسرے کو جہنمی سمجھتا ہے، اور اس کی بنیاد پہ پھر امت کو توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ فرمایا کہ اللہ کی دعوت پر لبیک کہے جانے کے بعد جو لوگ لبیک کہنے والوں سے اللہ کے معاملے میں جھگڑتے ہیں ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک باطل ہے، اور ان پر اس کا غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے، وہ اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ یہ کتاب اور میزان نازل کی، اور تمہیں کیا خبر شاید کہ فیصلے کی گھڑی قریب ہی آ لگی ہو، جو لوگ اس کے آنے پر ایمان نہیں رکھتے وہ تو اس کے لیے جلدی مچاتے ہیں، مگر وہ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یقیناً وہ آنے والی ہے۔ خوب سن لو، جو لوگ اس گھڑی کے آنے میں شک ڈالنے والی بحثیں کرتے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں، اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ گواہی دیں گے اس کی، اللہ کی مہربانیاں دکھتی ہیں اپنی زندگی میں، یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے آپ کو اپنے کلام کے لیے جمع کر دیا، جسے وہ جو کچھ چاہتا ہے دیتا ہے اور بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ اب اگلی آیت سنتے وقت بہت توجہ کی ضرورت ہے ہم سب کو، اور وہ کیا، من کان یرید الحرس الآخرۃ نزد لہ فی حرسہ ومن کان یرید حرس الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو ہم بڑھاتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں آخرت میں فصل کاٹنا چاہتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی خوب بڑھائیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے دنیا ہی میں دے دیتے ہیں مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیے کہ جن لوگوں کو زمینوں کے قریب رہنے کا اتفاق ہوا، یا کبھی ان کو گارڈننگ کا شوق ہے یا زمینداری کا شوق تھا، تو دو طرح کی فصلیں ہوتی ہیں نا، ایک وہ فصل ہوتی ہے جو بس شارٹ ٹرم ہوتی ہے، کسان جب بیج لگاتا ہے دو تین مہینے میں فصل آ گئی اور کٹ کے ختم ہو گئی۔ اس کے علاوہ ایک دوسری فصل کیا ہوتی ہے کہ جو بار بار کٹتی ہے، کچھ ایسے پودے ہوتے ہیں بس اوپر سے وہ کاٹتے ہیں پھر جڑوں پہ آ جاتی ہیں۔ اب ان دونوں کو سمجھیں، جو فصل ایک دفعہ آپ نے بیج لگایا اور اس کے دو تین مہینے بعد آ گئی اور کٹ کے ختم ہو گئی، پیچھے زمین بنجر ہے، یہ دنیا کی فصل ہے، دنیا میں کٹ گئی اور یہیں ختم ہو جائے گی، اور نہیں پتا کہ جب ضرورت پڑے بعد میں اس وقت تک پیسے ہی نہ ہو۔ لیکن وہ فصل جو کٹتی اور پھر بڑھتی ہے، کٹتی اور بڑھتی ہے، یہ آخرت کی فصل ہے۔ اب ہر انسان اپنے آپ کو چیک کر سکتا ہے۔ اب دیکھیے کہ اس دنیا کی ایک عجیب سی کہانی ہے، آپ جس چیز کی زیادہ طلب کریں گے نا وہ چیز اتنی ہی کم آپ کو ملے گی۔ یہ دنیا ایسی ہے جیسے کوئی تتلی پکڑتا ہے، کبھی آپ نے پکڑی تتلی، بٹر فلائی، آپ اس کے پیچھے بھاگیں گے نا وہ آگے آگے، جدھر بھاگیں گے وہ بھاگ جائے گی، آخر آپ تھک کے کہتے ہیں میں نہیں بیٹھتی، میں نہیں پکڑی، آپ آ کے بیٹھ کے اپنا کام شروع کریں گے तो वही तितली आके आपके बाल पे बैठ जाएगी। ये है दुनिया, आप इसके पीछे भागेंगे ना, ये आपसे आगे भागेगी। रियली यही चीज एक हदीस का खुलासा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वो शख्स है जो दुनिया के पीछे भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी खर्चा, ये भी करना है, ये आसाइश, ये फुलां फुलां, हाँप हाँप के थक जाता है। और दुनिया उतनी मिलती है जितनी नसीब में, और जितनी ज्यादा मिलती है उतनी ज्यादा हाथ से जाती है। अक्सर आप देखिए हर बंदा अपने आप को चेक करे, चूंकि हम खवातीन हैं तो हमारा तो इतना कोई कमाने का प्रोफेशन नहीं है, लेकिन मर्दों में ये चीज़ भी देखी गई और किसी हद तक अब औरतों और लड़कियों में और बच्चों में भी होती है ये चीज़। आप आजमा के देखें, एक वो वक्त था कि आपको पॉकेट मनी मिलता था अपने पेरेंट्स से, हर मुल्क में एक खास हद तक मिलता है ना। यहाँ की बात कर लें, कितना पॉकेट मनी देते हैं बच्चों को आप लोग, 8-10 साल के बच्चे को देते हैं या नहीं देते, एक एवरेज क्या है? बच्चे तो कहेंगे हमें कभी नहीं मिलता। जी आप सायमा, मिलता है आपको? आप जॉब करती हैं ना, आप देखिए कि एक वक्त होता है एक बड़ी लिमिटेड मनी मिलती है ना, उस वक्त उसमें भी गुजारा हो जाता है। फिर अब जैसे इन्होंने कहा कि जॉब करने लग गए, अब जॉब करते हैं तो आप जब बंदे को पॉकेट मनी मिल रहा होता है उस वक्त वो कहता है हाय क्या दिन होगा कि मैं जॉब करूं, मेरे पास इतने पैसे हों। अब वो पैसे भी आ गए, हाथ में कितने रहते हैं? एक भी नहीं आता ना। ये है दुनिया, यकीन करें जिस बंदे को ये हकीकत समझ आएगी ना, वो अपना सर्कल इतना छोटा कर लेगा। मैं आज भी यकीन से कह सकती हूँ कि जो बंदा जितना दुनिया में इन्वॉल्व है उस जेब उतनी खाली होती है, कभी $10-20 भी नहीं निकलेंगे जेब में। और जिसके खर्चे नहीं, जिसकी ज़रूरत नहीं, जिसका कोई आमदन नहीं, उसके पास फिर भी होंगे। वजह क्या कि उसकी ख्वाहिशें छोटी, तो उसने क्यों अपने आप को इतना लंबा चौड़ा लेके जाना है? आप देखिए कि एक ही ज़मीन है, आप मुझे ज़मींदारी का कुछ ज़्यादा पता नहीं, लेकिन एक ही ज़मीन का टुकड़ा है। आप इमेजिन करें इस आयत को, तो इंशाल्लाह आप अपने लिए ज़रूर कोई फैसला करके उठेंगे। आप सबके पास समझें कि एक कनाल ज़मीन है, हर एक को एक एक कनाल दे दी जाती है, चॉइस उसके पास है ना कि उसमें क्या उगाए। कोई इसके अंदर क्या चीज़ होती है सबसे सस्ती, कोई बताएगा? बहुत डिवैल्यू, यानी घास फूस उगा दे, मेहनत करे, उसको साफ करे, सब करे, फिर उसमें ऐसी घास उगा दे, और बाद में वो सस्ता सा कुछ जानवरों के लिए बिक जाए, कोई घोड़ों का मालिक ले जाए, कोई कुछ ले जाए बकरियों वाला। और एक बंदा है जो वो उसके अंदर मेहनत उतनी करेगा, मेहनत उतनी करनी है, टेक केयर भी करनी है, ज़मीन भी वही है, लेकिन वो उसके अंदर समझे कि चावल लगा लेता है या कोई कीमती सी फसल लगाता है। कौन अक्लमंद है, पहला के दूसरा? अपने आप को अकेले में रह के अल्लाह से बातें करें, ए अल्लाह मैं यही हूँ, 5-6-7 फुट जो भी मेरा जिस्म है, जो मेरा कद है, मेरी ज़िंदगी तुझे पता है तूने कितनी लिखी हुई है, 50, 60, 70 या 40, 20 या पता नहीं 40 का भी होना है कि नहीं, अल्लाह ने लिखी है ना। ए अल्लाह तू मुझे बेहतरीन जगह पे इन्वेस्ट करना। आप सोचें कि मैं और आप क्या हैं, अपनी खेती, हमारी खेती ये हमारे हाथ है ना, हम इन हाथों से कुछ करते हैं, हमारा दिमाग, हमारा दिल, हमारा जिस्म। तो अपने आप को एक खेती की जगह पे रखें और फिर अपनी कीमत लगाएं, आपको यहाँ से क्या उगाना है, दुनिया की आखिरत। और जिसने आखिरत का बीज लगाया, दुनिया तो रस्ते में आ जाती है। जिसको ये पता चल जाए, मैं कहती हूँ वो सिर्फ दुनिया ही लेने के लिए दीन की तरफ आ जाए। यानी ये दीनदार वैसे बड़े समझदार होते हैं, वो ये बातें आम नहीं करते, सच्ची बता रही हूँ। दीनदार हमेशा यही कहेंगे नमाजें पढ़ो, रोज़े रखो और ये करो, और लोगों तुम्हारी आखिरत बन जाएगी, दुनिया में कुछ नहीं रहेगा। बहुत कम लोग ये बात बताते हैं कि अल्लाह के बंदो आखिरत बनने से पहले दुनिया बनेगी। ये मैं पूरे शऊर और यकीन और अपने तजुर्बे से आपको बताऊंगी, अगर किसी मौके पे मैंने कोई इखलास से काम किया होगा। इमाम इब्ने तैमिया कहते हैं रहमहुल्ला, कहते हैं कि आखिरत की जन्नत में दाखिल होने से पहले लाजिम है कि इस दुनिया की जन्नत से गुजरो। अल्लाह पहले दीनदार की दुनिया अच्छी करता है। मैंने तो सच्चा दीनदार कभी को रोता हुआ नहीं देखा। और ये भी एक बात लिख के रख लें, जहाँ सच्चा दीन होगा, पिछले दौर के लोगों को, उलमा को देखिए, आइमा कराम को देखें, दौलत उनके घर की बांधी होगी। एक हाथ से लुटाएंगे, इधर से लुटाएंगे, फिर पता नहीं कहाँ आएगी, दिखता नहीं है। दुनिया दर्जन उसका दिखता बहुत है, चाहे वो उसका अपना ना ही हो, पंप एंड शो बहुत होता है उसकी ज़िंदगी में। वो लैंड क्रूजर में फिर रहा है, मिसाल है, मर्सिडीज में फिर रहा है, कोई भी मिसाल ले लें, लोग कहेंगे हाय आंखें खुल जाएंगी। अब वो उसकी ग्लैमर है, वो भी बड़े मज़े में आरामदेह कुर्सियों पे, सीटों पे बैठे, उसका दिख रहा है। हो सकता है कि वो चीज़ उसकी अपनी ही ना हो सकता है किसी की चीज़ के ऊपर अपना नाम लिखा हुआ। इसके बरक्स दीनदार क्या कहते हैं, मेरे पास कितने पैसे हैं, अभी नहीं है गाड़ी के, आराम से बैठो, चुप करो, बसों पे जाओ, अभी ज़रूरत नहीं। अच्छा गाड़ी अब तो ले सकता हूँ लेकिन बाद में अफोर्ड नहीं कर सकता। वो उस दिन लेने जाएगा जिस दिन गाड़ी के साथ साथ पेट्रोल के भी पैसे होंगे। अब बताएं कि एक बंदा एक बोझ के अंदर दबा हुआ है और दूसरा बंदा सिर्फ गुजारे की ज़रूरत की चीज़ ले लेता है, कौन बेहतर है? मैं खुद सोचती हूँ कि हम जिन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी बनाते हैं, यानी मसलन दिल में क्या आता है कि इससे इज्जत मिलती है। मैं आपको अपनी मिसाल दे देती हूँ, अभी भी शायद पर्स में हो तो मैं आपको खोल के दिखा दूँ। मुझे फ़ोन वगैरह इन चीज़ों को इस्तेमाल करने का इतना शौक ही नहीं है, लेकिन ज़रूरत के लिए सबके पास होने चाहिए होते हैं। मैंने यहाँ आने के बाद बिल्कुल फ़ोन नहीं लिया, वहाँ वाला इधर नहीं चला, कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद चंद महीने पहले मैंने सेकेंड हैंड फ़ोन लिया और मैं उस पर बड़ी खुश हूँ। आई डोंट केयर कि उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, क्या मेरा काम कर रहा है, बस मैं उसको हर जगह फिर गलती से छोड़ नहीं आती कि लोग बाद में देखें कितना अच्छा फ़ोन है और फिर मुझे वापस करें। मैं उसको उंगली में चेन में डाल के घुमाती नहीं हूँ, वो मेरी ज़रूरत की चीज़ें पूरी कर रहा है। अगर आपको मेरी इज्जत नहीं करनी तो भाई ना करें। अगर अच्छी चीज़ों, अच्छे कपड़े, अच्छी जूतियों से इज्जत होती तो मेरा हाल है आप आज मेरी बात ना यहाँ सुनने बैठते। आपको क्या पता ये मैंने कितना पुराना, शायद 6-7-8 साल पुराना सूट पहना हुआ है। हु केयर्स, मेरा दिल चाहे तो मैं पहन लूँ, लेकिन मैं आपके लिए क्यों पहनूँ? जो बंदा इस दुनिया में सच्ची खुशी चाहता है ना, उसको अपने लिए जीना चाहिए। पहने अच्छे कपड़े पहने, अच्छा खाना खाएं, अच्छे सेल फोन रखें, अच्छे घर रखें, अपने लिए रखें। और अगर ये सोचेंगे ना कि इससे फिर दुनिया में रहना है, तो आप आज एक मॉडल लेके तो आए, हो सकता है जब से मैंने लिया 3 और नए मॉडल आ चुके होते हैं। लोग कहते हैं गाड़ी नई निकलती है तो $50,000 की होती है, 1-2 साल के बाद वो 10-12 की हो जाती है। तो मैंने कहा आप 1 साल वेट ही कर लिया करें। कहते नहीं फिर उससे बड़ी आ जाती है ना। और आपको पता है एकदम क्यों चीज़ें गिरती हैं? अमेरिका की बात है, ये कंप्यूटर्स हैं मेरे पास, जितने कंप्यूटर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी आपके सामने रखे हैं, ये अपने हम स्कूल्स की, वो तो एक अलग बात है। मैं सिर्फ आपको ये मिसालें कोई शो के लिए नहीं दे रही, मुझे आई केयर भी नहीं। आप सारे भी कहना कि माशाल्लाह मैंने बहुत अच्छा काम किया या हमने किया, मुझे इसकी एक ज़र्रा बराबर परवाह नहीं। मेरे सामने दोनों लैपटॉप हैं, मैंने ये दोनों यूज़ लिए और माशाल्लाह पिछले 4-5 साल से ये दोनों मेरे काम कर रहे हैं। हिंज टूट गई कोई बात नहीं, ये देखें आपके पीछे इसके रखा हुआ है। मुझे ये अपना कंप्यूटर बड़ा प्यारा है क्योंकि इसकी वजह से मेरे कितने प्यारे साथी मेरी बात सुन रहे हैं। और अगर इसके बाद 10 मॉडल आए होंगे और मैं अफोर्ड भी कर सकती हूँ, ये मत सोचिए कि मेरे पास पैसे नहीं, लेकिन ज़रूरत नहीं। क्यों मैं अपने पैसे इधर खर्च करूँ, मैं आखिरत की खेती में क्यों ना लगाऊँ? आपने अगर अपने सारे बीज एक अनफर्टाइल कह लें या बंजर ज़मीन में लगा दिए, तो जब आप किसी फर्टाइल जगह पे जाएंगे तो वहाँ कैसे बीज डालेंगे? एक पैनी भी जमा करें, एक एक पैनी देखें कहाँ चाहिए। एक दीनदार की बात मैं अक्सर सुनाती हूँ कि उन्होंने कहते हैं कि मैंने उनकी दर्स में सुनी थी, अब्दुल्ला बहावलपुरी कहते हैं कि बच्चे को भेजा कोई चीज़ लेकर आओ, जैसे बच्चों को भेजते हैं दूध वगैरह और कुछ ब्रेड लेके आओ। जब बच्चे को पता नहीं उस दौर में क्या उन्होंने 10 का नोट दिया होगा, कहते बच्चा आया तो उसने चीज़ ला दी, तो मैंने कहा कि वापस कुछ नहीं बचे, जैसे चेंज जिसको हमारे यहाँ कहते हैं खुला। तो बच्चे ने कहा अब्बा वो 50 पैसे बचे थे, 50, 54, 58 जो उस दौर की बात थी। तो कहा किधर है? कहा मैंने कहा दुकानदार से, मैं नहीं लेता, रखो तुम, जैसे बड़े लोग करते हैं, आई डोंट केयर। कहते मुझे गुस्सा आ गया, मैं कहा चल लेके आ। तूने 58 वहाँ उसके पास छोड़ी, तू वहाँ से लेता और रास्ते में एक मस्जिद आती थी उसके चंदे में डालता, आज भी 58 की 2 ईंटें आ जानी थी तेरी, वो ईंटें उस मस्जिद के अंदर लग जाती। सोचिए, अब इस आयत को सुनिए कि मन का न युरीद हरसल आखिरती नज़िद लहू फी हरसिही। जो कोई आखिरत की खेती चाहता है, पूछें अपने आप से, दिल पे हाथ रख के पूछें, ये कोई आपसे नहीं मनवाएगा, क्या मैं आखिरत की खेती चाहती हूँ? इसकी खेती को हम बढ़ाते हैं, यकीन है इस बात का कि जिस चीज़ को अल्लाह बढ़ाएगा क्या वो कम होगी? कभी नहीं होगी। और जो दुनिया की खेती चाहता है, कितने चाहते हैं हाथ खड़े करें, उससे फिर दुनिया ही में दे देते हैं मगर आखिरत में इसका कोई हिस्सा नहीं। क्या ये लोग कुछ ऐसे शरीके खुदा रखते हैं जिन्होंने इनके लिए दीन की नौइयत रखने वाला एक ऐसा तरीका मुकर्रर कर दिया है जिसका अल्लाह ने इज़्ज़त नहीं दिया? अगर फैसले की बात तय न हो गई होती तो इनका किस्सा कब का पाक कर दिया जाता, यकीनन ज़ालिमों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। तुम देखोगे ये ज़ालिम अपने किए के अंजाम से डर रहे होंगे और वो इन पर आकर रहेगा। बखिलाफ इसके जो लोग ईमान ले आए हैं और जिन्होंने नेक अमल किए हैं वो जन्नत के गुलिस्तानों में होंगे, जो कुछ भी वो चाहेंगे अपने रब के हाँ पाएंगे, यही बड़ा फजल है। یہ ہے وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے. کون سے بندے؟ جہاں بھی لفظ عباد پڑھتی ہوں یا عباد یا اللہ اپنے بندے کہتے تو مجھے بڑی محبت آتی ہے, اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ اللہ کو کتنا پیار اپنے بندوں سے, کہ اللہ خوشخبری دیتا ہے اپنے ان بندوں کو جنہوں نے مان لیا اور نیک عمل کیے. اللہ ہمیں ماننے والے اور نیک عمل کرنے والے کر لے.